सूरत अलंकबूत आयत नंबर 31 से 40 तक में हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम, लूत अलैहि सलाम, अहले मदियन, आद, समूद, कारून, फिरौन, हमान के वाकयात की तरफ अजमाली निहायत इख्तसार से इशारा किया गया है। और ये सारे वाकयात जो हैं ये इबरत के लिए हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को तसल्ली देने के लिए हैं कि राह हक में जो है वो पैगंबरों के साथ किस तरह के हालात पेश आते हैं, और कौमें जब पैगंबरों का इनकार करती हैं तो फिर उनका क्या अंजाम होता है। अहले मक्का को इबरत हासिल करनी चाहिए और इसके अलावा हर दौर में इनकार करने वालों को। वलम्मा जाअत रुसुलुना, फरमाया और जब आए और जब पहुंचे रुसुलुना हमारे भेजे हुए हमारे फरिश्ते इब्राहिमा इब्राहिम अलैहि सलाम के पास। आप ये बात याद रखें कि रसूल जो है ये पैगाम ले जाने वाले को कहते हैं, और ये अंबिया कराम भी हैं रसूल से मुराद, और अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते भी, क्योंकि दोनों ही अल्लाह के एम्बेसिडर हैं जो अल्लाह का पैगाम लेकर जाते हैं। और जब हमारे फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए बिल बुशरा खुशखबरी के साथ, बाशीन रा बशर, ये ऐसी खुशखबरी को कहते हैं कि जिससे चेहरा खिलखिला उठे, और बशर जैसे इंसान को कहते हैं ना, तो इन चेहरे की जो स्किन है वो तमतमा उठे। और यहाँ पे बशारत है हजरत इसहाक अलैहि सलाम और याकूब अलैहि सलाम की पैदाइश के बारे में। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम बूढ़े हो चुके थे, इनकी बीवी जो हजरत सारा थी ये बांझ थी, और इसकी तफसील आप सूरत हूद और सूरत हिजर में भी पढ़ चुकी हैं कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम के पास खुशखबरी देकर भेजा। पालू, फरिश्तों ने कहा, इन्ना मोहलेकू, असल में मोहलेकून था, नून जमा का नून गिर चुका है, तस्निया का भी गिर जाता है और जमा का भी गिर जाता है। फरिश्तों ने कहा कि बेशक हम मोहलेकू हिलाक करने वाले हैं, अहले हाजे हिल करिया, इस बस्ती के रहने वालों को, इस बस्ती के लोगों को। और इस बस्ती से मुराद है लूत अलैहि सलाम की कौम। तो एक तरफ हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम को खुशखबरी दी है हजरत इसहाक अलैहि सलाम और याकूब अलैहि सलाम की पैदाइश की, और दूसरी तरफ कौमे लूत की हलाकत जो है इसकी इत्तला दी है। कहा कि हम इस बस्ती को हिलाक करने वाले हैं, फिर वजह बताई, इन्ना अहलहा कानू जालिमीन, क्योंकि इसके लोग सख्त जालिम हो चुके हैं। जब हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम को लूत अलैहि सलाम की कौम की तबाही की खबर दी गई तो वो उदास हो गए और इनकी बस्ती पर रहम खाते हुए कहने लगे कि हो सकता है कि वो ईमान ले आए और वो अपने गुनाहों से तायब हो जाएं। और ये भी कहने लगे कि वाला इन्ना फीहा लूता, कि वहां तो लूत रहते हैं, लूत अलैहि सलाम जो थे हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम के भतीजे थे, कहा वहां तो लूत रहते हैं और वो ईमान लाने वाले भी थे, वो पैगंबर थे, तो कैसे आप उस बस्ती को हिलाक करेंगे। पालू, फरिश्तों ने कहा, नहनु आलमु बिमन फीहा, कि हम खूब जानते हैं, बिमन कौन, और यहाँ पे मन से मुराद है अख्यार भी और अशरार भी, मोमिन भी और काफिर भी। तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि हम खूब जानते हैं कि कौन वहां पे मुसलमान रहते हैं और कौन वहां पे काफिर रहते हैं। लनु नज्जियन्नहु, हम जरूर बा जरूर निजात दे देंगे उसको, हम जरूर बा जरूर बचा लेंगे लूत को, वह अहलहू और इसके घर वालों को। तो लूत अलैहिस्सलाम और इनके घर वालों को हम बचा लेंगे। और घर वालों से मुराद कौन है? ईमान लाने वाले। इल्लम रातहु, सवाए उसकी बीवी के। अब आप देखें कि एक तरफ कह रहे हैं कि हम उनके घर वालों को बचा लेंगे और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि उनकी बीवी नहीं बच सकती। और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी ये ईमान नहीं लाई थी, ये पीछे रह जाने वालों में से थी। कहा कानत मिनल गाबिरीन, कि बीवी इनकी पीछे रह जाने वालों में से है। सूरत तहरीम आयत 10 में भी अल्लाह ताला कहते हैं कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी वो वफादार नहीं थी। नबी की बीवी थी लेकिन वो ईमान ना लाई और काफिर कौम का साथ दिया। अब आप जरा गौर करें यहां पर कि लूत अलैहिस्सलाम एक पैगंबर होने के बावजूद अपनी बीवी को बचा नहीं सके। और दूसरी जो खास बात है वो ये कि जो इनकी बीवी थी एक मुद्दत तक, एक उम्र जो है एक पैगंबर की सोहबत में गुजारी है, लेकिन फिर भी ईमान नहीं लाई। इनकी हमदर्दियां, इनकी दिलचस्पियां अपनी कौम के साथ रही। और यहाँ पे एक और बात बताई जा रही है कि अल्लाह के यहाँ रिश्तेदारियां, बरादरियां कोई चीज नहीं है। हर शख्स के साथ जो मामला है उसके अपने ईमान और अखलाक की बुनियाद पर होता है। और किसी औरत का पैगंबर की बीवी होना भी उसको कुछ फायदा नहीं दे सकता अगर उसने अपना दीन और इखलाक जो है वो संवारा नहीं है, अगर उसका दीन और इखलाक जो है वो मुशरिकाना है। तो आयत नंबर 31 में खुशखबरी के साथ कौम लूत की तबाही का जिक्र है और ये नहीं कहा कि ऐसे ही तबाह किया जाएगा बल्कि वजह बताई है, इन अल्लाह कानू जालिमीन। और आयत नंबर 32 में बताया जा रहा है कि ईमान लाने वालों को तो बचाया जाएगा लेकिन इनकार करने वालों को तबाह कर दिया जाएगा। और उस तबाही के मंजर में जो है वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी है इनका नाम भी सरे फहरिस्त है। वलम्मा अंजा रसूलुना, और फिर जब हमारे रसूल मुराद फरिश्ते हैं, और जब हमारे फरिश्ते जो थे वो आए लूतन लूत अलैहिस्सलाम के पास। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास से फरिश्ते जो थे वो लूत अलैहिस्सलाम के पास जो है वो आ जाते हैं। सी आ बिहिम, सी आ जो है इसका रूट है सीन वो हमजा, और ये कहते हैं किसी बुरी चीज को कहते हैं। तो अब ये जो कहा कि सी आ बिहिम, तो बिहिम की जमीर जो है ये फरिश्तों के लिए आई है, जैसे सू बुराई है तो सा बुरा होना, तो सैया जो है ये बुराई को कहते हैं, सैयात उसकी जमा है, और असा आ बुरा बनाना। तो अब सी आ कि जब फरिश्तों को लूत अलैहिस्सलाम ने देखा तो क्या हुआ, फरिश्तों को देखकर उन्हें बुरा महसूस हुआ। सी आ बिहिम, क्यों बुरा महसूस हुआ? इसलिए कि जो फरिश्ते थे वो खूबसूरत नौजवान लड़कों की शक्ल में आए थे और हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम के इखलाक से वाकिफ थे, और वो खूबसूरत लड़कों की शक्ल में जब मेहमानों को देखा तो बहुत परेशान हो गए, गमजदा हो गए। उन्हें ये बात बुरी लगी कि ये जो इंसानी शक्ल में मेहमान आए हैं तो अब मैं अपनी कौम की सरकशी से इनको कैसे बचाऊं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो खूबसूरत मेहमान हैं मेरी कौम जबरदस्ती इनसे बेहयाई का इर्तकाब करेगी और जिससे मेरी रुसवाई हो जाएगी। तो वो बहुत ही अफसुरदा हो गए और परेशान हो गए क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि ये फरिश्ते हैं। उन्हें तो देखा कि नौजवान हैं, लड़के हैं, खूबसूरत हैं, और कौम की जो इखलाकी हालत थी, जो उनकी बेहूदगी थी, जो उनकी बेहयाई थी, जो उनके अंदर अल्फाहिशा का मर्ज पाया जाता था उससे वो बखूबी वाकिफ थे। सी आ बिहिम, तो वो सख्त जो है वो अफसुरदा हो गए। दाका बिहिम जरा, दाका का मानी आपको आता है दीक, द्वाद या काफ, ये तंगी के लिए आता है, और वो तंग हुए बिहिम इन खूबसूरत लड़कों के आने पर। जरा, जरा के मानी क्या होते हैं? जाल रा आयन, ये कहते हैं कोहनी से लेकर दरमियानी उंगली के आखिरी हिस्से को। अब देखें कि कोहनी से लेकर दरमियानी उंगली का दरमियानी हिस्सा, और इसके इससे मुराद क्या है कि तंग हुआ उनका बाजू। तो दरअसल ये किनाया है, हाँ, यानी बाजू का तंग होना, इससे मुराद है आजी। इसको आप याद कर लें कि ये किनाया है, और बाजू का तंग होना, इससे मुराद है कि वो आजीज हो गए, वो बेबस हो गए। जैसे बाजू जो है वो कुव्वत की अलामत समझी जाती है, तो अगर उनके अंदर कुव्वत होती, मजबूत होते, उनके साथ बहुत से लोग होते, तो फिर कोई मसला नहीं था। लेकिन अब वो मेहमानों की इज्जत की हिफाजत कैसे करें, वदा का बेहिम जरा, और उनका बाजू तंग हुआ, किनाया है जिससे मुराद है कि वो आजीज हो गए, उनका दिल तंग हो गया। अरबी जबान में दाकत यदा, हाथ का तंग होना, इसके मानी होते हैं कि गुर्बत, किसी का फकीर हो जाना, गरीब हो जाना। उसका हाथ तंग हो गया यानी वो गरीब हो गया, और बाजू तंग हो गया जैसे दिल तंग हो रहा है, इसके मानी है कि वो आजीज आ गया है, बेबस है। तो लूत अलैहिस्सलाम फरिश्तों के आने पर परेशान हुए, उनको फरिश्तों का खूबसूरत शक्ल में जो आना था, लड़कों की शक्ल में, वो बहुत ही जो है वो उनको गमजदा कर गया, रंजीदा, दुखी हो गए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि ये अल्लाह के फरिश्ते हैं। वकालू, जब लूत अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने परेशान देखा कि इनके ये इतने परेशान हैं, उन्हें चूंकि बहुत घुटन महसूस हो रही थी, तो फरिश्तों ने उनको तसल्ली दी और दो बातें कही। वकालू ला तखफ, फरिश्तों ने कहा डरो नहीं, वला तहजन, और रंज नहीं करो। इसके माने ये थे कि तुम हमारे मामले में से डरो नहीं, हमारा तुम्हारी कौम कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। और इस मौके पर फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम पर जो है ये राज फाश कर दिया कि वो इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते हैं, और अल्लाह ताला ने उन्हें इस कौम पर अजाब देने के लिए भेजा है। फरमाया इन्ना मुनज्जू का व अहला का इल्ला मुरता का कानत मिन अल्गाबरीन। फरिश्तों ने कहा इन्ना मुनज्जू का, बेशक हम आपको बचाएंगे। नून जीम वो, इसका मतलब होता है निजात देना, बचाना, हम आपको बचाएंगे। वो अहला का, और आपके घर वालों को, इल्ला मगर नहीं, इमराता का, आपकी बीवी, कानत मिन अल्गाबरीन, बेशक वो पीछे रह जाने वालों में से है। अब आप देख लें कि लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो है, दो दफा इसका जिक्र हुआ है, पिछली आयत में भी कानत मिन अल्गाबरीन, और यहां पे भी कानत मिन अल्गाबरीन। और गाबरीन जो है, गाबारा इसका रूट है, और इसके मानी होते हैं गर्दो गुबार, जैसे कोई चीज गुजरती है तो उसके पीछे उसका गर्दो गुबार रह जाता है। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर थी, और जो उसकी दिलचस्पियां थी, उसकी हमदर्दियां थी, वो काफिर कौम के साथ थी, तो कहा कि वो भी काफिर कौम के साथ पीछे रह जाएगी, और आपको और जो आपके साथ ईमान लाने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको बचा लेगा। इन्ना मुनजिलून अला अहले हाजिल करियती रिजम मिनस समा बिमा कानू यफसुकून। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि बेशक हम नाजिल करने वाले हैं इस बस्ती पर, हम इस बस्ती के लोगों पर नाजिल करने वाले हैं रिजजन। रिजजन जो है ये अजाब के लिए आया है, और ऐसा अजाब के जिससे लोगों के अंदर जो है वो एक कपकपी पैदा हो जाए। तो हम इस बस्ती के लोगों पर रिजजन, अजाब नाजिल करने वाले हैं। मिनस समाई, आसमान से, क्यों, बिमा कानू यफसुकून, उस फिस्क की बदौलत जो ये करते हैं। यफसुकून, तूफा सीन काफ जो है, इसके मानी होते हैं अल्लाह की अतात की हुदूद से बाहर निकलना। तो ये वो कौम है जो अल्लाह की अतात की हुदूद से बाहर निकलती है, ये वो कौम है जो कि फासिक है, नाफरमान है। तो यफसुकून का लफ्ज जो है ये नाफरमानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पीछे आप देखें कि आयत नंबर 31 में आपने पढ़ा इन्ना अहलहा कानू ज़ालिमीन, और यहाँ पे कहा कि अजाब उनकी नाफरमानी की वजह से उन पर आएगा। तो अल्लाह ताला अदल करने वाले हैं। अल्लाह ताला कभी किसी कौम पर, कभी किसी बस्ती पर जो है वो जुल्म नहीं करते, किसी पर ज्यादती नहीं करते। तो अगर कोई कौम नाफरमान है, अगर कोई कौम जो है वो अल्लाह की अतात नहीं करती, तो फिर उस पर अल्लाह के अजाब का कोड़ा जो है वो बरसता है। वलकद तरकना मिन्हा आयतन बय्यिनतन लिक़ौमिन याक़िलून, फरमाया और हमने उस बस्ती की एक खुली निशानी छोड़ दी है। आयतन बय्यिनतन, तो खुली निशानी से मुराद क्या है? इससे मुराद है डेड सी, बहीरे मुर्दार, जिसे बहरे लूत भी कहा जाता है। और ये खुली निशानी किसके लिए थी? उस जमाने में खास तौर पर अहले मक्का को मुखातिब किया गया। अहले मक्का जो है जब शाम के तिजारती सफर पर रवाना होते, तो रास्ते में जो है वो उनका गुजर जो है वो इस डेड सी के पास से, इस इलाके से होता। तो कहा कि जालिम कौम पर जो इनकी करतूतों की वजह से अजाब आया है, और तुम जब दिन रात वहां से गुजरते हो तो तुम उसको देखते हो, तो इसमें तुम्हारे लिए जो है वो एक इबरत है। और ये जो डेड सी है, इसका जनूबी हिस्सा, इसके बारे में अब जो मौजूदा साइंस है और जो मौजूदा तहकीक है वो भी इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि एक हौलनाक जलजले की वजह से डेड सी का एक हिस्सा जो है वो जमीन में धंस चुका है, और इसी धंसे हुए हिस्से में कौमे लूत का मरकजी शहर सडूम ये वाकया था। इस हिस्से में पानी के नीचे कुछ डूबी हुई बस्तियों के आसार भी पाए जाते हैं, और जदीद जो आलात हैं इसकी वजह से कुछ कोशिश भी कर रहे हैं कि वहां जाकर आसार को देखें, कोशिश करें। और कहते हैं कि जो इस तरह मुख्तलिफ टीमें गईं, तो उन्होंने जैसे रस्सी को जो फेंका, तो वो रस्सी जो थी पूरी की पूरी जो थी वो गल गई। तो और हमने उस बस्ती की एक खुली निशानी छोड़ दी है, क्यों छोड़ी है? ये कौम याकिलून, एक ऐसी कौम के लिए जो कि अकल रखती है। तो इससे मुराद है कि जिनके पास अकल है, जिनके पास समझ है, तो उन्हें ये बात अच्छी तरह पता चल जाएगी कि अल्लाह का अजाब जो है वो किस किस्म के लोगों पर आता है, और अल्लाह का अजाब जो है वो क्यों आता है। ये है जो कि खास तौर पर जिस बात को नुमाया किया जा रहा है। तो अकल का मतलब ये नहीं है कि इंसान दुनियादार बन जाए। अकलमंद उसे नहीं कहते जो दुनिया की दौलत को जमा करे, दुनिया के लिहाज से बड़ा कामयाब हो। अकलमंद ये है, अकलमंदी ये है कि इबरत की नजर रखी जाए, और ऐसी फिक्र होनी चाहिए कि दूसरों के अंजाम से इबरत हासिल की जाए। और दूसरों के अंजाम से जो इबरत लेना है ये वही लेते हैं जिन जो समझते हैं, और जिनको जो है वो कुछ नजर नहीं आता तो वो खंडरों से, आसार से कुछ भी निशानी हासिल नहीं करते। फिर जो है शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र है, वा इला मदियना अखाहुम शुएबा, और मदियन की तरफ हमने इनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। शुएब अलैहिस्सलाम जो है ये इनको मदियन की कौम की तरफ भेजा गया। आप इनका जिक्र सूरत अल आराफ और पिछली कई सूरतों में पढ़ चुकी हैं। मदियन के बारे में एक राय तो ये है, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम था। दूसरी राय ये है, बाज ये कहते हैं कि पोते का नाम था और बेटे का नाम मिदियान था, और फिर इन्हीं के नाम पर कबीले का नाम पड़ गया, जो फिर इनकी नस्ल जो है वो मदियन कहलाई। और इसी कबीले मदियन की तरफ शोएब अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया। तीसरी राय ये भी है कि मदियन शहर का नाम था, ये कबीला या शहर लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती के ये करीबी था। فقال یا قومی، اور شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، وارجو الیوم الآخرہ، اور روزے آخرت کے امیدوار بن جاؤ. تو انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو دو چیزوں کی دعوت دی، ایک توحید اور دوسری آخرت کی. تیسری بات، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو. اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف اللہ کی عبادت کی دعوت ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ آخرت کی یاد دلائی جا رہی ہے. تو یہ جو توحید کی دعوت ہے یہ کیوں ہے اور آخرت کی یاد کیوں دلائی جا رہی ہے؟ اصل میں توحید کا نچوڑ یہ ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کی جائے، اللہ کی اطاعت کی جائے اور شرک نہ کیا جائے. اور زندگی کے معاملات میں جو اللہ کے احکامات ہیں اس کے مطابق چلا جائے. تو یہ قوم کیا کرتی تھی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر مال کی ہرس بہت زیادہ تھی. یہ دھوکہ دیتے تھے، یہ فریب کرتے تھے، ناپ تول جو ہے اس میں ڈنڈی مارتے تھے اور زمین میں فساد پیدا کرتے تھے. تو اللہ تعالی کی بندگی کیا ہے؟ کہ جائز تجارت کی جائے، اس میں جھوٹ نہ بولا جائے، امانت کا خیال رکھا جائے، دھوکا نہ دیا جائے. اور دھوکا دینا، لوٹ مار کرنا، یہ جو معاش کا طریقہ ہے یہ فسادی طریقہ ہے. تو اس لیے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی. دوسری طرف جو آخرت کی یاد دہانی ہے، تو دراصل انسان جب آخرت کو بھولتا ہے تو گناہ کرتا ہے، جب آخرت کو بھولتا ہے تو زیادتیاں کرتا ہے. آخرت کو جب فراموش کر دیتا ہے تو قومیں اور افراد گناہوں میں دلیر ہو جاتے ہیں. تو یہ جو گناہ کرنا ہے اور گناہ میں جو دلیری ہے، یہ دراصل آخرت کو بھولنے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. اور توحید اور آخرت کے انکار کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ اللہ کی زمین کو زیادتی سے اور ظلم سے بھر دیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا تیسری بات، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فسادی بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو. تعثوا، تعثوا جو ہے اس کے معنی ہے فساد کرنا، یہ فساد کے لیے بھی آتا ہے. تو زمین میں جو ہے وہ فساد نہ کرو. اور پھر آ گیا کہ مفسدین، یہ بھی جو ہے وہ فساد کے لیے ہی آیا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں تعصب میں اور فساد میں کیا فرق ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ آپ یہ لفظ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جب آپ نے سورت البقرہ کو پڑھا تھا تو آپ نے وہاں پہ جو ہے فساد کے بارے میں پڑھا تھا. تو یاد رکھیے کہ فساد کرنا، اس کا پہلا درجہ ہے فسادہ، کسی چیز کا بگاڑنا، خراب کرنا، مادی اور مانوی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. اور دوسرا درجہ ہے یہ جو ہے وہ عصا کا، ولا تعصوا. تو اس کا روٹ ہے عین سا الف، اور بعض لوگوں نے اس کا روٹ عین یا سا بھی لکھا ہے. بعض کہتے ہیں نہیں، عین سا یا ہے، عین سا یا. تو یہ جو ہے عین سا یا ہے یا عین سا الف ہے یا عین یا سا ہے، یہ ذہنی اور فکری بگاڑ کے لیے آتا ہے. جیسے لٹریچر یا تقریروں کے ذریعے غلط عقائد جو ہے ان کو رواج دینا، جیسے کسی کو قتل کر دینا، ظلم اور زیادتی کرنا، کسی کو اس کا حق نہ دینا. تو یہ دوسرا درجہ ہے فساد کرنے کا. اور تیسرا درجہ ہے نزغہ. آپ نے سورت یوسف میں پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا. तो नजाखा का मतलब होता है दो चीजों के दरमियान फसाद पैदा कर देना या बिगाड़ पैदा कर देना, और इसका ताल्लुक एक से भी हो सकता है, एक से ज्यादा से भी हो सकता है। झगड़ा करना, झड़प करवाना, दुश्मनी पैदा करना, दखल अंदाजी देना, मुदाखलत करके फसाद पैदा करना। तो बहरहाल फसाद का लफ्ज जो है इसके लिए कुरान में तीन लफ्ज आए हैं, तो एक फसाद का, दूसरा अफा का, और तीसरा जो है वो नजाका का। तो यहाँ पे दोनों लफ्ज यहाँ पे आ गए हैं कि उन्होंने कहा कि जमीन में फसादी बनकर ज्यादतियां ना करते फिरो, फकज्जबूहू, कौम के लोगों ने शुएब अलैहिस्सलाम को झुटला दिया, फाखजत हुमुर रजफतु, फिर उन्हें जो है रजफा यानी एक सख्त जलजले ने पकड़ लिया, फअसबहू फी दारहिम, पस वो हो गए अपने घरों में जासेमीन। जासेमीन जो है इसके मानी होते हैं उल्टे हुए, जीम सा मीम इसका रूट है, परिंदे का सीने के बल जमीन पर बैठना और फिर इसे चिमट जाना। तो इसी से किनायतन ये लफ्ज इस्तेमाल होता है किसी शख्स का सीने के बल जमीन पर लेट जाना, गिर जाना, तो वो अपने घर में जो है वो पड़े के पड़े रह गए। तो अब आप देखिए कि शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम है यहाँ पर अब उसकी तबाही का जिक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर बादलों के साए वाले दिन अजाब भेजा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम की एक सख्त चीज से जमीन जलजले से लर्ज उठी जिससे इनके दिल इनकी आंखों में आ गए और इनकी मौत वाकया हो गई और वो घुटनों के बल बैठे के बैठे रह गए। यहाँ पे बड़ी शिद्दत है, बड़ी सख्ती है कि उनकी हालत बिल्कुल तब्दील हो गई। फासबाहू हालत की तब्दीली के लिए आता है कि जहां मजे कर रहे थे और जमीन में दौड़ धूप कर रहे थे, कहां उनका यह हाल हो गया कि जासिमीन में शामिल हो गए। फिर इसके बाद आयत नंबर 38 में कौम आद और कौम समूद का जिक्र है, व आद व समूदा। कौम आद जो है इसका इलाका अहकाफ था, ये हजर मौत यमन के करीब ये कौम रहती थी। कौम आद कहाँ रहती थी? अहकाफ का इसका इलाका था, यमन के करीब हजर मौत में ये रहती थी। और कौम समूद जो है ये हिजर में रहती थी जिसे आजकल मदाइने सोहले कहा जाता है, और हिजाज के शुमाल में ये वाकया है। तो ये जो इलाके थे, कौमे आद यहाँ रहती थी और जहां पे कौमे समूद रहती थी, इन इलाकों से अरबों के काफले जो थे, तिजारती काफले आते जाते थे। तो अरबों के लिए ये बस्तियां कोई नई नहीं थी, बल्कि अरब लोग इन बस्तियों से मुतारिफ थे, जानते थे। वक़द तबैयना लकुम मिन मसाकिनहिम, अल्लाह ताला कहते हैं कि वक़द तबैयना, और तुम पर वाजे हैं, वक़द तबैयना, और तुम पर जो है वो जाहिर हुए, मिन मसाकिनहिम इनके घर, यानी जो इनके घर हैं, जो इनके मकानात हैं, तुम उनको जानते हो कि कहाँ वो रहते थे। वज़य्यना लहुम शैतानु आमालहुम, उनके अमाल को शैतान ने उनके लिए खुशनुमा बना दिया। ये बड़े ही अफसोस की बात है कि शैतान किसी के लिए उसके बुरे अमाल को खूबसूरत बना दे। तो यहाँ पे भी यही बात कही जा रही है कि इनके बुरे अमाल जो थे, जो ये बदकिरदारियों में मुब्तिला थे, जो अल्लाह की नाफरमानी के अंदर ये मुब्तिला थे, तो इनके बुरे अमाल को शैतान ने इनकी नजरों में खूबसूरत बनाकर पेश किया। फसद्दहुम अनिस सबीली वकानू मुस्तबसिरीन, फसद्दहुम, पस रोका इनको। और आपको पता है ना कि शैतान खुद नेकी के काम से रोकता है, औरों को नेकी के काम से रोकता है। तो शैतान ने क्या किया कि इनको जो है वो रोका, अनिस सबीली सिराते मुस्तकीम से, नेकी के रास्ते से। वकानू मुस्तबसिरीन, हालांकि वो लोग जो थे वो होश गोश रखते थे। मुस्तबसिरीन, मुस्तबसिरीन जो है इससे मुराद है, इसका रूट है बा स्वाद रा, और बसर जो है किसे कहते हैं? बसर का लफ्ज जो है ये इस्तेमाल किया जाता है नजर के लिए, तो वो कानू मुस्तबसरीन, वो बड़े होशियार थे, तामीर तमद्दुन हुकूमत सियासत दुनियादारी के लिहाज से वो बड़े माहिर थे, चालाक थे, लेकिन इनकी चालाकी इनकी होशियारी इनको शैतान के फंदों से बचा ना सकी। अफसोस के इनके बुरे अमाल को शैतान ने इनकी नजरों से इनकी नजरों में खूबसूरत बनाकर पेश किया और इनकी आंखें अल्लाह और आखिरत से बिल्कुल बंद हो गई। नतीजा क्या निकला कि वो हिलाकत के खड्ड में जाकर गिरे। ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर ना सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीख सहर कर ना सका। तो दुनिया के लिहाज से तो ये बड़े तरक्की याफ्ता थे, लेकिन जो है वो आखिरत से इनकी आंखें बंद हो गई, अल्लाह को ये भूल गए। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है, फकानु मुस्तबसिरीन, बड़े वो अक्लमंद थे, हालांकि वो बड़ा होश गोश रखते थे। फकारून व फिरऊना, और कारून और फिरऔन, वहामान और हामान। आप याद रखिएगा कि मूसा अलैहिस्सलाम जो थे इन तीनों की तरफ भेजे गए थे। कारून कौन था? जिसे मालो दौलत के खजाने अता किए गए, पीछे सूरत कसस में आप इसके बारे में पढ़ चुकी हैं। और कारून जो है वो इस गलत फहमी में मुब्तिला हो गया था कि उसके पास जो मालो दौलत के ढेर है वो इस बात की अलामत है कि वो अल्लाह के यहाँ बड़ा मुअज्जज और मोहतरम है। और कारून ने मूसा अलैहिस्सलाम की दावत का इनकार किया था। फिरौन जो मुल्के मिस्र का हुक्मरान था और उलूहियत का उसने दावा कर दिया, मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल को फिरौन ने गुलाम बना रखा था और आजाद करने से इनकार कर दिया, यहां तक कि अल्लाह ताला ने उसको जो है वो समंदर की लहरों के सुपुर्द कर दिया। वहामान, और जो हामान था ये फिरौन का जो है वो वजीरे तामीरात था। वलकद जाअहुम मूसा बिलबय्यिनाति, मूसा अलैहिस्सलाम इनके पास बय्यिनात लेकर आए। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को इन तीनों के पास जो है वो मोजात देकर भेजा था। फस्तकबरू फिल अर्दी, बस उन्होंने जो है वो जमीन में अपनी बड़ाई का ऐलान किया। फस्तकबरू, बस वो अपने मुल्क में बड़े बन बैठे। वमा कानू साबिकीन, और वो हमसे आगे नहीं जा सकते थे। वो ऐसा नहीं हो सकता था कि ये जो है ना वमा कानू साबिकीन, कि वो कुफर करके फिर वो हमारी गिरफ्त से बच जाते, ऐसा नहीं हो सकता था। ये बड़ा ही सख्त अंदाज है कि वो भागकर अल्लाह ताला से बच नहीं सकते थे, वो अल्लाह की तदबीरों को नाकाम करने की ताकत नहीं रख सकते थे। फकुल्लन अखज़ना बिज़म्बिही, फरमाया कि आखिरकार हर एक को हमने इसके गुनाह में पकड़ा। तो अल्लाह ताला ऐसे नहीं किसी को सजा देता, उसके अमलों की वजह से इंसान का अपना किया कराया उसके आगे आ जाता है। तो अल्लाह ताला ने उनके गुनाहों की वजह से उन पर जो है वो अजाब भेजा, उनको हिलाक कर दिया। फमिनहु मन अरसलना अलैहि हासिबा, फरमाया कि इनमें से किसी पर हमने पथराव करने वाली हवा भेज दी। तो ये कौन है फमिनहुम, इससे मुराद कौमे आद है, और कौमे आद पर मसलसल 7 रात और 8 दिन जो है वो सख्त हवा का तूफान रहा। ये सूरत अलहाका आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला कहते हैं कि इन पर 7 रात और 8 दिन जो है वो सख्त हवा का जो है वो अजाब रहा। और आप देखें कि यहाँ पे जो जिक्र है हासिबा का, तो हासिबा जो है ये ऐसी हवा को कहते हैं जिसके अंदर पत्थर हो, किंकर हो, तेज आंधी जो पत्थर किंकर उड़ाती फिरे, घोड़े का इतना तेज दौड़ना कि उसके पांव से किंकरियां हवा में उड़ने लगे, तब भी ये इस्तेमाल किया जाता है। और नागवार हवाओं के लिए कुरान में 13 लफ्ज आए हैं, और हासिब जो है ये इसका सातवां दर्जा है। तो ये जो अजाब था ये किस पर आया? ये कौमे आद पर आया। फमिनहु मन अखज नहु सेहतु, और फिर इनमें से किसी को एक जबरदस्त धमाके ने आ लिया। सेहा का जो लफ्ज है ये जैसे लकड़ी को चीरने फाड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, कि जब लकड़ी को चीरा फाड़ा जाता है तो उस वक्त जो एक आवाज पैदा होती है उसको कहते हैं। तो सेहा से मुराद क्या है कि एक जबरदस्त धमाका, और यहां पे इससे मुराद है कौमे समूद। कौमे समूद, कौमे समूद जो है इसने क्या किया था, इसने मोजे का मुतालबा किया था, और ईमान लाने की बजाय उसी मोजे को जो है फिर उन्होंने कत्ल कर दिया। वो जो ऊंटनी थी उसको उसकी कोंचे काट डाली, तो अल्लाह ताला ने उस पर जो उसको जो है वो एक सख्त सेहा के अजाब से जो है वो तबाहो बर्बाद कर दिया। फमिनहु मन खसफना बिहिल अर्दा, और किसी को हमने जमीन में धंसा दिया, इससे मुराद है कारून। खा सीन फा, और इसके मानी है जमीन में धंसा देना। वमिन्हु मन अगरकना, और किसी को हमने गरक कर दिया, और इससे मुराद है फिरौन और हामान, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने समंदर की लहरों में जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया, डुबो दिया। वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, अल्लाह उन पर जुल्म करने वाला ना था। कितनी खूबसूरत बात है, आप देखें, आप गौर करें, इन आयात में अल्लाह ताला बार बार कह रहे हैं कि मैंने किसी पर कोई ज्यादती नहीं की। कौम लूत के बारे में कहा इन्ना अहला कानू ज़ालिमीन, और कहा कि बिमा कानू यफसुकून, और कौम शुएब के बारे में कहा कि वो फसादी थे, मुफसिद थे। फिर इसी तरह कौम आद और समूद के बारे में कि वो गुनाह करने वाले थे। कारून और फिरौन के बारे में वो किब्र करने वाले थे। और इसी तरह फिर सारों का अंजाम बताकर कहा वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, अल्लाह उन पर जुल्म करने वाला न था मगर वो खुद ही अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे। तो ये जो सारे वाकयात हैं इनमें दो बातें खास तौर पर नुमाया होती हैं। पहली बात तो ये कि जब कोई जुल्म करता है तो अल्लाह की जो दुनिया है वो अंधेर नगरी नहीं है, फिर अल्लाह जो है उनके जुल्म और सितम और बद अमालियों पर उन्हें पकड़ता है, उन्हें सजा देता है, उन्हें इबरत के निशान बनाकर रख देता है, जैसे कि ये गुनाहगार कौमें। दूसरी तरफ अहले ईमान को तसल्ली दी गई है, परेशान ना हो और सख्त तूफान में भी सब्र से काम लें, अल्लाह पर भरोसा रखें, और याद रखें कि एक वक्त ऐसा जरूर आएगा कि अल्लाह दीन हक को जो है वो सर बुलंद करेगा। आयत नंबर 41 से 44 तक, 41 से 44 तक शिर्क और अहले शिर्क की मिसाल दी गई है। मसलुल लजीन अत्तखजू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अंकबूत, जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे सरपरस्त बना लिए हैं उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है। अब आप देखें कि अंकबूत जो है ये वाहिद को कहते हैं और इसकी जमा है अनाकिब, अनाकिब। इसकी जमा है अनाकिब, और ये मकड़ी को कहते हैं जिसको आप जो है वो स्पाइडर कहती हैं, स्पाइडर भी कहती हैं। तो और आपने देखा भी होगा कि मकड़ियां क्या करती हैं कि जाले बना लेती हैं। तो कहा कि इत्ता खजत बैता, के जो अपना एक घर बनाती है, इतना खजत कि उसने बना लिया बेटा एक घर, वह इन्ना अवहन अलबयूती, और बेशक सबसे कमजोर अलबयूती घरों में से, अलबैत वाहिद है और अलबयूत जो है ये जमा है। और यहां पर जो है वो हा नून जो है इसका रूट है ओहन का, और वहन जो है ये कमजोरी के लिए इस्तेमाल होता है। आपने सूरत आले इमरान में पढ़ा था, जब गजवाए उहद पर आपने तबसरा पढ़ा था कि वला ताहिनू, वहां पे आपने पढ़ा था कि और कमजोरी ना दिखाओ, दबो नहीं। तो ये इसका रूट है वो हा और नून, सुस्ती करना, कमजोरी दिखाना। वइन्ना अवहन अलबयूती, और घरों में सबसे कमजोर, लबैतुल अंकबूत, अलबत्ता मकड़ी का घर होता है। अब आप देखिए कि वो लोग जो शिर्क करते हैं अल्लाह के सिवा गैरों को अपना यार और मददगार समझते हैं, उनके सामने सर झुकाते हैं, अल्लाह ताला ने उनकी मिसाल मकड़ी और उसके जाले से दी है। मकड़ी अपना जाला अपने इर्द गिर्द बुनकर समझती है कि अब वो सर्दी गर्मी और दुश्मन से महफूज है, लेकिन आपको अंदाजा है कि वो जाला कितना कमजोर होता है, वो कितना हल्का होता है। मकड़ी के जाले की कुछ भी हकीकत नहीं, बस एक उंगली की चोट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पे अल्लाह ताला मुशरिकीन को मुतनब्बे कर रहे हैं, तंबीह कर रहे हैं कि ये जो तुम शिर्क करते हो, तो ये जो माबूदों के एतमाद पर तुमने तवक्कुआत के जो घरोंदे बनाए हैं, इनकी हकीकत मकड़ी के जाले से ज्यादा नहीं है। तुम्हारी तवक्कुआत का ये घरोंदा अल्लाह की तदबीर की पहली चोट पर पाश पाश हो जाएगा। मानी क्या है कि तुम्हारे जो ये माबूद हैं, तुम समझते हो कि ये तुम्हारे मुश्किल कुशा हैं और तुम्हारे जरूरतें पूरी कर सकते हैं, तुम्हारे मसाइल हल कर सकते हैं, और तुम इनके सहारे जीते हो, तो इनके जो सहारे हैं ये मकड़ी के जाले की तरह कमजोर हैं, बहुत ही जो है वो नापायदार है, निहायत बोधे है, बिल्कुल जरा सी चोट बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अगर माबूद जो थे वो लोगों को बचा सकते, तो पिछली कौमें जो थी वो तबाह क्यों हुई? दुनिया ने देखा कि जब अल्लाह का अजाब आया तो कोई इन्हें बचा ना सका, तो क्या करना चाहिए? अल्लाह का सहारा थामना चाहिए, क्योंकि पिछली कौमें थी वो शिर्क करने वाली थी, और उनके जो माबूद थे, देवता थे, अवतार थे, जिन्हें वो मुश्किल कुशा समझते थे, गौसे आजम समझते थे, अपने मसाइल के हल के लिए उनसे तवक्कुआत बांधी हुई थी, वो जब अल्लाह ने उनको पकड़ा तो वो उनके कुछ भी काम ना आ सके। लव कानू यालमून, काश ये लोग इल्म रखते, काश इन्हें ये बात समझ आ जाती, इन्नल्लाह यालमु मा यदउन मिन दूनही मिन शई वहुवल अजीजुल हकीम, ये लोग अल्लाह को छोड़कर जिस चीज को भी पुकारते हैं अल्लाह उसे खूब जानता है, वही जबरदस्त और हकीम है। यहाँ पर जो है वो अल्लाह ताला का तारुफ करवाया जा रहा है कि अल्लाह इन सब चीजों की हकीकत को खूब जानता है जिन्हें ये लोग माबूद बनाए बैठे हैं और उन्हें मदद के लिए पुकारते हैं। अल्लाह को खूब पता है कि इनके हाथ में कोई इख्तियार नहीं है, ये बड़े बेबस है, तो इख्तियार और ताकत किसके पास है? हुवल अजीजु, अल्लाह है गालिब जबरदस्त अल हकीम और हिकमत वाला। तो ताकत का मालिक भी अल्लाह, और उसी की तदबीर और हिकमत से ये कायनात का निजाम चल रहा है। वतिल्कल अमसालु नद्रिबुहा लिन्नास, ये मिसालें हम लोगों को समझाने के लिए बयान करते हैं। वमा याकिलुहा इल्लल आलिमून, मगर इनको वही समझते हैं जो इल्म रखने वाले हैं। अल आलिमून ये इस्म फाइल है, अल आलिम वाहिद है, अल आलिमून इसकी जमा है। खलकल्लाहु समावाती वल अर्दा बिल हक, अल्लाह ने आसमानों और जमीन को बरहक पैदा किया है। إن في ذلك لآية للمؤمنين إن في ذلك لآية للمؤمنين. در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے, اس کے معنی یہ ہے کہ زمین و آسمان کا نظام حق پر قائم ہے, نہ کہ باطل پر. زمین و آسمان کی تخلیق جو ہے یہ سچ ہے, صداقت ہے. تو توحید حق ہے, بالکل اسی طرح جیسے کہ زمین و آسمان کی تخلیق حق ہے. اسی طرح شرک جو ہے یہ باطل ہے, اور مشرکین کے جو اوہام ہیں, تخیلات ہیں, تو اس کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ قرآن کی اصطلاح میں عالم کون ہے. یہ جو آیت نمبر 43 میں کہا گیا کہ العالم جو ہے وہ عبرت حاصل کرتے ہیں, تو اس سے مراد ایسا علم ہے جو اللہ کا خوف پیدا کرے اور پھر انسان جو ہے وہ حقیقت کو سمجھے. قرآن کی اصطلاح میں اصل میں عالم وہ ہیں جو کہ کائنات کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں, اس سے صحیح سبق حاصل کرتے ہیں, اور قرآن و سنت کا علم حاصل کر کے ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. اور اگر کوئی بہت ہی اسکالر ہے, اس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے, اور ماسٹر پہ ماسٹر ہیں, بہت سے علوم اس کے پاس ہیں, لیکن نہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے نہ وہ آخرت کی تیاری کرتا ہے, تو وہ جو ہے, ہاں وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر کیوں نہ ہو لیکن وہ عالم نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یخش اللہ من عباده العلماء, کہ بے شک اللہ سے در حقیقت جو ہے وہ علم رکھنے والے ہی ڈرتے ہیں. تو اصل چیز جو ہے وہ خشیت ہے, خوف ہے. تو یہ تھی سورت العنکبوت کی آیات جو ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ دوسری قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرے, عبرت حاصل کی جائے, اور ایک اللہ کی بندگی کی جائے, ایک اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکایا جائے, اور آخرت کی جزا اور سزا پر یقین رکھا جائے, اور یہ بات نہ بھولی جائے کہ کوئی رشتہ دار, کوئی دولت, کوئی حکومت, کوئی سرداری, کوئی بھی جو دنیا کے لحاظ سے انسان سوچتا ہے نا کہ یہ چیز فلاں وقت پہ کام آ جائے گی, اللہ کے ہاں کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسان کے اپنے اعمال. اور اتنی بڑی بڑی قومیں تھیں اور کتنا ان کا جو ہے وہ عبرت والا انجام ہوا. ایران کا مشہور بادشاہ تھا جمشید. بننے سے پہلے ایک چشمے پر اس نے پتھر کا ایک کتبہ نصب کرایا جس پر یہ الفاظ لکھوائے کہ اس چشمے پر مجھ جیسے بہتوں نے دم لیا, لیکن وہ پلک جھپکنے میں رخصت ہو گئے. میں نے دنیا بہادری اور زور سے حاصل کی, مگر افسوس میں اسے اپنے ساتھ قبر میں نہ لے جا سکا. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے, کتنی دنیا ہو, کتنی دولت ہو, ہارون یہ جو آپ نے پڑھا, حامان کا, قارون کا ذکر پڑھا, فرعون کا پڑھا, قوم عاد, قوم سمود, قوم شعیب, قوم لوط, یعنی بڑی بڑی عظیم قومیں اور بڑی ان کے پاس دولت, لیکن ان کے کوئی چیزیں, یہ چیزیں ان کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہ سکیں. تو یاد رکھیں الا کل شئین ما خلا اللہ باطل, اللہ کل شئین ما خل اللہ باطل, آگاہ رہو کہ اللہ کے سوا ہر چیز جو ہے وہ باطل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت. تو کیا کرنا ہے کہ دنیا میں دل نہیں لگانا اور آخرت کی تیاری کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے, اور ہماری فکریں, ہماری سوچیں, ہمارے خیالات, ہماری خواہشات جو ہیں وہ اللہ کی رضا کی پابند ہو جائیں, اللہ کی مطیع ہو جائیں, اور پھر ہماری باتیں بھی اور ہمارے عمل بھی, اور ہم وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.